पृष्ठ संख्या 138। तुलसीदास। तुलसीदास कविता में निराला द्वारा प्रतिष्ठित ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक अर्थ अधिक स्पष्ट है। उसके संकेत साफ हैं और उनकी ध्वरी अर्थ व्यंजना पकड़ने में कठिनाई नहीं होती। भारत के सांस्कृतिक अंधकार की चिंता से ही कविता प्रारंभ होती है, लेकिन इस अर्थ के साथ ही निजी। पृष्ठ संख्या 139। आत्म साक्षात्कार का अर्थ और अधिक स्पष्टता और गहराई से निराला ने इस कविता में पिरोया है। इससे भी आगे राम की शक्ति पूजा से इस कविता की खास विशेषता यह है कि इस निजी आत्म साक्षात्कार वाले अर्थ के माध्यम से ही सांस्कृतिक अंधकार को चिंता वाला अर्थ भी प्रतिष्ठित होता है। भारत का सांस्कृतिक सूर्य अस्त हो चुका है। चारों ओर एक नैतिक पराजय का उदास माहौल है। इससे मुक्ति तुलसी के कवि की ओजस्वी वाणी द्वारा ही संभव है। इस तरह ये दोनों अर्थ बहुत ही खूबसूरत ढंग से कविता में समाहित हैं। राम की शक्ति पूजा में कवि ने राम की शक्ति पूजा में कवि के निजी अर्थ संभार, उसकी रचनात्मकता के संघर्ष को ढूंढना और मिलाना पड़ता है। तुलसीदास में ऐसा नहीं है। दूसरे जन की चिंता, भारत की सांस्कृतिक अंधकार से मुक्ति की समस्या, तुलसीदास की अपनी रचनात्मकता की परीक्षा के भीतर से होकर आती है। राम की शक्ति पूजा में राष्ट्रीय मुक्ति के प्रतीक राम राम ही हैं, निराला नहीं। निराला वह तब हैं जब वह कवि के निजी रचनात्मक संघर्ष के साक्षात्कार वाले प्रतीकार्थ में नियोजित होते हैं। अर्थात पहले अर्थ की प्रतिष्ठा में वह नए धरातल पर प्रतिष्ठित राम ही हैं। रामो रामेयो ना परा, लेकिन दूसरे रूप में राम में निराला प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास में तुलसीदास राम भी हैं और या तुलसी और उनमें प्रतिरोपित राम निराला ही हैं। यानी कि राम कथा के रचयिता तुलसीदास और राम और निराला यहाँ एक हो जाते हैं। तुलसीदास के माध्यम से यह जन साधारण की दुर्दशा और सांस्कृतिक अंधकार की चिंता निराला के कवि की आधुनिक चिंता है। राम की शक्ति पूजा में राष्ट्रीय मुक्ति के चिंतक राम और निराला के रचनात्मक संघर्ष के प्रतीक राम को मिलाया नहीं जा सकता। यही अंतर तुलसीदास को शिल्प और काव्य संगठन तथा रचनात्मक स्तर पर राम की शक्ति पूजा से अधिक संगठित, सुचिंतित, संतुलित और महत्वपूर्ण कविता सिद्ध करता है। तुलसीदास निराला के निजी सांस्कृतिक अंधकार की चिंता से शुरू होती है। कविता के प्रारंभ में तुलसी नहीं है। भारत के अधः पतन, उसके सांस्कृतिक अंधकार, आर्य संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति की विजय से उत्पन्न खिन्नता का वर्णन निराला स्वयं करते हैं। फिर वह अतीत के ध्वस्त वैभव और शौर्य का स्मरण करते हैं और पाते हैं कि किस तरह संपूर्ण जाति का मस्तिष्क, उसकी बौद्धिक ऊर्जा और उसका पराक्रम नष्ट हो गया है। इसी विनष्ट शौर्य का प्रतिफलन सांस्कृतिक अंधेरे में हुआ है। संपूर्ण भारत के बौद्धिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पतन का यह चित्र निराला शुरू से दसवें छंद तक करते चले जाते हैं। भारत के नव का सांस्कृतिक सूर्य शीतल हो गया है। मुसलमानों का सर्वत्र शासन है। पंजाब, फिर पृष्ठ संख्या 140, कौशल विहार, फिर धीरे धीरे संपूर्ण देश उनके एक छत्र अधिकार में चला गया। एक झंझावत की तरह, बर्फीली आंधी की तरह उत्तर से दक्षिण की ओर मुगलों का प्रसार बढ़ता गया। बुंदेलखंड, कालिंजर, जोधपुर, मारवाड़ सब उनके नीचे रौंद दिए गए। वीरता और शौर्य के प्रतीक राजपूत अब सिर्फ राजाओं के वेश में गुलाम हैं या चटुकारिता में लीन हैं। इस पृष्ठभूमि पर निराला तुलसीदास को 11वें छंद में उतारते हैं। फिर यह अधः पतन का सूत्र निराला का ना रहकर तुलसी का हो जाता है। इसे यों ही कह सकते हैं कि यहाँ से निराला तुलसी के रूप में स्वयं कविता में उतरते हैं। अभी तक वह तटस्थ वर्णनकर्ता थे, अब यहाँ से वह उसमें शामिल और सक्रिय हो जाते हैं। इसके आगे पूरी कविता में निराला प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं उतरते, कहीं दखलंदाजी नहीं करते, क्योंकि वह तुलसी के रूप में पूरी कविता में आगे सर्वत्र विद्यमान है। वह सांस्कृतिक चिंता का उत्तराधिकार तुलसी को सौंप कर स्वयं उनमें समाहित हो जाते हैं। इसीलिए आगे उन्हें व्यक्ति निराला की दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ती। उनके सारे निर्णय, सारी उत्फुल्लता, सारा आवेग तुलसी के माध्यम से व्यक्त होता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कवि की रचनात्मक सिद्धि और उपलब्धि के अर्थ के भीतर से ही उसके सांस्कृतिक निर्माण का अर्थ भी उगता है, क्योंकि निराला जानते हैं कि उन्हीं की मंत्रपूत ओजस्वी वाणी, मौलिक वाग्मिता और गहरे अध्ययन तथा जीवन और संस्कृति की विराट समझ के भीतर से पुनः भारतीय जनता के लिए आशा, विश्वास और आस्था का नया सूर्य उगेगा। देश काल के सर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष छवि धर, इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी, निश्चेतन निज तन मिला विकल, छलका शत शत कलमश के छल, बहती जो वे रागिनी सकल सोएंगी। यहाँ पर भी प्रकांतर से वही जय होगी हे पुरुषोत्तम नबीन की पुनः प्रस्तुति है। पापयुक्त छदम रागनियाँ सब परास्त होंगी और इस अनंत सौंदर्य और मेधा वाले कवि की वाणी के स्वर में ही संपूर्ण देश माँ सरस्वती अपना नया राग भरेंगी। निराला इस बात से भी सचेत हैं कि वह कवि मात्र समधीत और शास्त्रविद ही नहीं हैं, जिसकी चर्चा वह पीछे एक पद में कर चुके हैं, बल्कि वह देश काल सामायिकता समाज और जन साधारण के दुख शर से बिंधा हुआ है। उनका घायल छटपटाता हुआ मन अपनी संवेदना की इन भूमियों को अपनी पृष्ठ संख्या 141 रचनात्मकता से तिरोहित नहीं होने देगा। यही माँ भारती का नया स्वर होगा। अपनी इसी देश कालगत ऐतिहासिक सामाजिक चेतना को निराला ने नए पत्ते की कविताओं में उपेक्षित के उन्नयन के रूप में उठाया और प्रतिष्ठित किया है। उसके संकेत राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास दोनों ही कविताओं में मिल जाते हैं। तुलसीदास में तुलसीदास के रूप में निराला इसलिए प्रतिष्ठित हैं क्योंकि यहाँ से वह जनसाधारण को तुलसीदास के सोच में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। और जनसाधारण में भी कौन, द्विज वर्ग या सवर्ण लोग नहीं, जिनकी सबसे अधिक चिंता तुलसीदास को अपने रामचरितमानस में है, बल्कि वहाँ इस कविता में तो उन्हें नृपवेश सूतबंदीगण कहकर निराला ने प्रकांतर से उनकी वास्तविक स्थिति पर व्यंग्य ही किया है। तुलसीदास में तुलसी की मुख्य चिंता का विषय शूद्र हैं, सदियों से प्रताड़ित, उपेक्षित, दलित, निम्न वर्ग। यह वही तुलसीदास हैं जो रामचरित में हैं। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी कहकर उनका परिचय देते हैं। लेकिन यहाँ इस कविता में आकर उनकी चिंता का मुख्य विषय यही शूद्र हैं। सांस्कृतिक अंधकार में पूरे देश के डूब जाने के पीछे सवर्णों और सुविधाजीवी इन सूतबंदीगणों द्वारा जनसाधारण का यही शोषण है। चलते फिरते पर निसहाय वह दीन छीड़ कंकाल काय, आशा केवल जीवनोपाय उर उर में रण के अश्वों से, शल्य सकल दलमल जाति ज्यों दल के दल, शूद्र गण क्षुद्र जीवन संबल पुर पुर में। निश्चय ही मानसिक बनावट का यह फर्क तुलसीदास को रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास नहीं रहने देता। इसीलिए यह कथा केवल इतिवृत्त नहीं है, तुलसी के व्यक्तित्व के माध्यम से यह चिंता कविता निराला के अपने रचनात्मक आयामों की चिंता का उद्घाटन है। वह अपनी काव्य दृष्टि के असीम फैलाव को इस कविता में संकेतित करते हैं। उनकी कविता केवल निजी सुख दुख के प्रसंगों की कविता नहीं है, बल्कि देश काल के शर से बिंधी हुई वह जनसाधारण की संपूर्ण पददलित मानव समाज की रचना संवेदना है, जिसे कवि ने जीवन के कठिनतम पृष्ठ संख्या 142 संघर्षों में से होकर जिया और पाया है। इसी के लिए वह फिर से समर लड़ेगा, इसी को पाएगा और अंततः प्रतिष्ठित करेगा। यह निर्णयात्मकता, यह अपने काव्योद्देश्य का सूक्ष्म और गहरा ज्ञान उपलब्धि है, उसी अभिव्यक्ति आत्मसंभवा की खोज, पहचान और उपलब्धि है, जिसकी चर्चा हम राम की शक्ति पूजा के प्रसंग में कर चुके हैं। राम की शक्ति पूजा में जहाँ रचनात्मकता का यह संघर्ष रावण और राम के संघर्ष में आरोपित है, वहाँ तुलसीदास में यह तुलसीदास और संपूर्ण मायावी शोषक अत्याचारी मुस्लिम संस्कृति के आपसी संघर्ष में आरोपित है। प्रकांतर से इस मायावी शोषक संस्कृति और रावण के आसरी प्रसार में अंतर नहीं है, दोनों के संकेतार्थ एक ही हैं। अंतर केवल यही है कि राम चूंकि एक कवि या रचनाकार नहीं है, इसलिए उनके चरित्र में जब निराला अपने रचनात्मक संघर्ष को प्रतिरूपित करके एक नया अर्थ खड़ा करते हैं, तो वह थोड़ा अमूर्त हो जाता है, क्योंकि राम के व्यक्तित्व की जो ऐतिहासिक, पौराणिक और जनमनगत श्रृंखला या पहचान है, उसमें कवि राम की कल्पना थोड़ी कठिन लगती है। लगता है राम के चरित्र को इस नए अर्थ की प्रतीति और प्रतिष्ठापना के लिए कुछ ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया गया है, लेकिन रचनात्मक संघर्ष की उसी समस्या को जब निराला तुलसीदास में आरोपित करते हैं, तो वह सहज ही विश्वसनीय लगता है। और द्विज समर्थक तुलसी का शूद्र समर्थक और द्विज विरोधी होना भी कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं करता। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिच्छवि से जीवन हर, जीवन भर भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। इस समय की उद्घोषणा और शक्ति प्राप्त राम की होगी जय के धरातल एक ही हैं, लेकिन तुलसीदास में सिर्फ सांस्कृतिक अधःपतन और कवि की ओजस्वी वाग्मिता से उसकी मुक्ति का सवाल ही एकमात्र सवाल नहीं है। निराला ने पहली बार एक कविता के माध्यम से कवि की संपूर्ण रचना प्रक्रिया का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। कविता में तुलसीदास के आचरण के साथ ही उनके अध्ययन, उनकी अभिरुचि, उनके स्वास्थ्य, स्वर और धीर गंभीर व्यक्तित्व की चर्चा निराला ने की है। यह प्रकांतर से निराला की अपनी ही व्यक्तित्व संपन्नता का चित्र है। यह रचनात्मकता की जैसे पहली मानसिक तैयारी पृष्ठ संख्या 143 है। इसी मनोभूमि से कवि अपना रचनात्मक आक्रमण शुरू करता है, इसीलिए उसे खूब अध्ययनशील, पुष्ट, परिपक्व और पारंगत होना चाहिए, तभी वह अनुभव के अनेक क्षेत्रों में अपना मानसिक संक्रमण संवरण जारी रख सकेगा और रचनात्मकता की विराट वेदना को झेल सकने में समर्थ होगा। अतः यह अंश तुलसीदास के व्यक्तित्व का पारंपरिक सौंदर्य वर्णन न होकर रचना प्रक्रिया के विश्लेषण और अध्ययन का पहला चरण बन जाता है। युवकों में प्रमुख रत्न चेतन समधीत शास्त्र काव्योलोचन, जो तुलसीदास वही ब्राह्मण कुल दीपक आयत दृग पुष्ट देह गत भय अपने प्रकाश में निःसंशय, प्रतिभा का मंद स्मित परिचय संस्मारक। निराला का यह संक्षिप्त वर्णन देखने लायक है। बड़ी बड़ी आँखें, स्वस्थ शरीर, निर्भय मन, अध्ययन के प्रकाश में निःसंशय बुद्धि, लेकिन प्रतिभा अभी पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं, केवल उसकी मंद स्मिति प्रकट है, केवल उसका आभास भर मिलता है, तैयारी पूरी है, सिर्फ वह प्रस्फुटित होने को है। इसी मनोभूमि से आगे चलकर कवि तुलसी जीवन के अनेक प्रांगणों में प्रवेश करते हैं। अनुभव के साक्षात्कार की इस प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में ही कवि ने जैसे उनकी चित्रकूट यात्रा को नियोजित किया है। कवि तुलसी अपनी व्यक्तिगतता से बाहर आकर प्रकृति और सामाजिक जीवन की विशालता में पहली बार प्रवेश करते हैं। उन्हें प्रकृति के सौंदर्य के अनुभव के साथ ही जनसाधारण की दुर्दशा और संपूर्ण भारतीय जनजीवन व्यवस्था और मेधा के अधः पतन का तीखा अनुभव होता है। वह अपने समधीत शास्त्र काव्यलोचन द्वारा भारत के गौरवशाली अतीत से परिचित हैं। अपने इस पुस्तकीय अध्ययन को बाहर सामाजिक जीवन में ना पाकर उन्हें इसका तीखा बोध होता है और वह उसी वक्त अपनी वाणी की वचस्विता द्वारा इस अपूर्णीय क्षति को पूरने की मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं। उन्हें लगता है कि इस संपूर्ण जड़ संस्कृति को, इस प्रस्तरीभूत भारतीय मेधा को राम बनकर मुक्त करना होगा, जिससे वह अपने प्राचीन गौरव, अपनी पुरातन सुंदरता और पवित्रता को पुनः प्राप्त कर सके। लो चढ़ा तार पाषाण खंडे करो हार, देश स्पर्श अहिल्यो उद्धार सार उस जग का। पृष्ठ संख्या 144। अन्यथा यहाँ क्या अंधकार, बंधुर पथ पंकिल सरी कगार, झरने झाड़ी कंटक बिहार पशु खग का। यहाँ निराला बड़े ही प्रतीकात्मक ढंग से तुलसी के निर्णयों का सूक्ष्म संकेत देते हैं। उन्हें किसी दशा में अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना है। वह इस बंधुवर पथ, जानवरों की अत्याचारी पशुवत आचरण करने वाली भारतीय प्रकृति श्री को दबाने, दबोचने, अभिशप्त कर देने वाले आसुरी विलासी संस्कृति के प्रसार को समझते हैं। इससे पाषाणवत पड़ी संस्कृति का उद्धार केवल रामत्व को अंगीकार करके ही हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि तुलसी, राम और निराला यहाँ आकर एकम एक हो जाते हैं। राम के चरित्र में तुलसी के चरित्र के प्रतिरोपण और प्रकांतर में उसमें ही अपने ही कवि चरित्र की सन्निहिति के इस संकेत से ही मैंने राम की शक्ति पूजा में राम में भी निराला के रचना व्यक्तित्व को खोजने की प्रेरणा पाई। अपने रचनात्मक निर्णय की इसी तीखी अनुभूति से कब उद्वेलित हो उठता है। यहाँ पर निराला ने रचनात्मक आनंद के प्रथम अनुभव का बड़ा ही अमूर्त किंतु भावमय और सटीक वर्णन किया है। उसकी व्याकुलता का आनंद, उसकी उन्मन उदास तन्मयता में धीरे धीरे संपूर्ण मानसिक चेतना का ऊर्ध्वमुखी होना और इस तरह उस कलात्मक क्षण की अनहोनी प्रथम अनुभूति, कला रचना के इसी मनोवैज्ञानिक पक्ष का इतना काव्यमय सूक्ष्म विश्लेषण शायद ही कहीं और उपलब्ध हो। यानी कि विषय तो है शास्त्र व्याख्या का, आलोचना और विश्लेषण का, और उसे निराला ने एक बिंबयुक्त शब्द लय में बांध दिया है। बहकर समीर ज्यों पुष्पाकुल, वन को कर जाती है व्याकुल, हो गया चित्त कवि का त्यों तुल कर उन्मन, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, छोड़ता रंग पर रंग, रंग पर जीवन। यह ऊर्ध्वगामिता रहस्यवादिता का पर्याय नहीं है। शब्दों की यह अमूर्तता और विशिष्ट मुद्रा तुलसीदास के जीवन और काव्य संबंधों को बरकरार रखने के लिए की गई है, जिससे उसका इतिवृत्त अपने प्रारंभिक रूप में सुरक्षित रहे, जिससे यह बिल्कुल अपने संदर्भों से टूटकर आज का ही संदर्भ ना बन जाए। भाषा की इस पृष्ठ संख्या 145 सामासिक तत्सम योजना के पीछे मूल में यह वस्तु की मांग ही है। निराला तुलसीदास के लोक आख्यान को उसके उस रूप में भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वह उस अर्थ से छूट जाता है तो उसमें आरोपित नया अर्थ ही व्यंजना न बनकर इतिवृत्त का रूप धारण कर लेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी इतिवृत्ति को रचना में पुनर्प्रस्तुत करने की पहली शर्त तो यही है कि उसका मूल ढांचा सुरक्षित रहे और फिर उसी के भीतर नक्काशी से उसकी रूप सज्जा को एक नया अर्थ दे दिया जाए। तुलसी के लोक आख्यान को सुरक्षित रखने के लिए कवि ने भाषा बंध की इस पुरातन नवीनता या नवीनीकृत पुरातनता का सहारा लिया है। इसलिए तुलसीदास कविता के भूमिका लेखक का यह मत उचित नहीं जान पड़ता कि यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना का विश्लेषण करना ही कवि का इष्ट रहा है। कवि का इष्ट तो रचनात्मकता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। भाषा का यह तत्सम किंतु कुछ कुछ दार्शनिक रहस्यमय शब्दावली का उपयोग तो लोक आख्यान और तुलसी के इतिवृत्त अर्थ को एकतान रखने के लिए किया गया है। इसीलिए मन की इस ऊर्ध्वगामिता में भी तुलसी देश की राहुग्रस्त आभा को देखना भूलते नहीं। उनका जीवन इस जनवेदना से भस्मसात हो रहा है। वह धीरे धीरे जीवन के व्यापक विराट अनुभव को उसी तरह अपनी रचना के लिए संचित करते हैं जैसे ऋतु के प्रभाव को कोई पेड़। वह उसी तरह अपने अंतर को धीरे धीरे समृद्ध और पूर्ण करते जाते हैं। उन्हें शेष श्वास मूक पशुओं की तरह सवर्णों के ग्रास सूत्रों की यात्रा की तीखी अनुभूति होती है। वर्ण व्यवस्था पर यह प्रहार नए तुलसी का है, प्रकांतर से निराला का है। इस सामाजिक समत्व को तुलसी के लोक आख्यान में रामानंद के विष्णु की आराधना का अधिकार सभी को दिए जाने से हल्का सा मिलाया जा सकता है, लेकिन प्रमुखता तुलसी के रूप में उपेक्षित के उन्नयन की यह चिंता निराला के जनसाधारण मन की सांस्कृतिक निष्ठा का ही रूप है। देश काल की दुर्दशा, पतन और शोषण की इसी तीखी अनुभूति की पृष्ठभूमि में अनुभव संचयन की इसी आधार भूमि पर कवि अपनी रचना संवेदना की दिशा की सच्ची और मौलिक पहचान करता है। करना होगा या तिमिर पार, देखना सत्य का मिहिर द्वार, बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय, लड़ना विरोध से द्वंद्व समर, रहा सत्य मार्ग पर स्थिर निर्भर जाना, भिन्न भी देह निज घर निःसंशय। पृष्ठ संख्या 146। यह वही तिमिर है जिसमें राम की शक्ति पूजा में राम घिरे हुए हैं। शक्ति की मौलिक परिकल्पना से राम इस अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। तुलसी अथवा निराला अपनी रचनात्मकता की सही दिशा की पहचान, अपनी मौलिक प्रतिभा की शक्ति मंतता से इस तिमिर को पार करके नए सूर्योदय की घोषणा अपनी वर्चस्वी वाणी से करते हैं। अनुभव अर्जन और अनुभव समृद्धि की इस व्याख्या के पश्चात निराला ने रचनाकार के मानसिक भटकाव का वर्णन किया है। इसी संदर्भ में उन्होंने रत्नावली के लोक आख्यान को नियोजित किया है। इस मोह के सर्वग्रासी प्रभाव का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन निराला ने किया है। इस दशा में भी कवि को लगातार यह लगता रहता है कि उसका सारा अनुभव संचय व्यर्थ हो रहा है। इस निजी सुख लाभ, इस स्वार्थांधता में उसका जीवन क्षय निश्चित है। रचनात्मकता का विनाश उसे बराबर एक तीखी अनुभूति देता रहता है, लेकिन अपनी आंतरिक ईमानदारी के कारण वह अपने भटकाव को कुछ दिनों के लिए सच मान लेता है और उसमें पूर्णतया डूब जाता है, लेकिन उसका यह भटकाव सर्वग्रासी सिद्ध नहीं होता। उसे उसका भटकाव ही चेतावनी देता है और अंततः वह अपनी निःसंशय रचना तपस्या की ओर लौटता है। मोह मुक्ति के इस प्रसंग का बड़ा ही भावमय वर्णन कवि ने किया है। चमकी तब तक तारा नबीन, दुति नील नील जिसमें विलीन, हो गई भारती रूप छीण महिमा अव, आभा भी क्रमशः हुई मंद, निस्तब्ध व्योम गति रहित छंद, आनंद रहा मिट गए द्वंद्व बंधन सब, वे मुंदे नयन जानो उन्मीलित, कली में सौरभ ज्यों चित में स्थित, अपनी असीमता में अवसित प्राणाशय, जिस कलिका में कभी रहा बंद, वह आज उसी में खुली मंद, भारती रूप में सुरभि छंद निष्प्राश्रय। आत्ममोह की इसी स्थिति से वह इसी के भीतर से नए रूप में अपने कवित्व को प्राप्त करता है। रत्नावली के रूप में भारतीय दर्शन इस नए अर्थ का पृष्ठ संख्या 147 इतिवृत्त भाग सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। अपने इसी नए अर्थ की प्रतिष्ठा के कारण तुलसीदास अपने लोक आख्यान से पृथक एक सर्वथा नूतन महत्व धारण करती है। उसके प्रसंग एक स्तर पर आधुनिक इतिहास के प्रसंग हैं, जो दूसरे स्तर पर कवि की रचना प्रक्रिया की शाश्वत व्याख्या, उसकी रचना समृद्धि और उसके संवेदनागत निर्णयों से जुड़े हुए हैं।